हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। स्नेहा जी झलक के बारे में अपनी फिक्र जाहिर ही कर रही थी कि अनामिका ने तुरंत उनका हाथ थाम लिया और बोली, माँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है झलक की ज़िंदगी में प्यार ज़रूर आएगा, और उसे भला कौन रोक पाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी का मकसद अपनी बहन की खुशियाँ देखना है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। अगर वो मेरी खुशी चाहती है तो मैं भी तो उसकी खुशी चाहती हूँ। देखना माँ, बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में कोई हैंडसम डैशिंग सा लड़का ज़रूर आएगा। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, अचानक उसकी नज़र गेट के बाहर रुकी हुई एक कार पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, कार के अंदर आदित्य राणा बैठे थे और उनके साथ झलक। अनामिका की आंखें फैल गईं। अरे, ये तो मैंने अभी अभी विश मांगी थी, इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई? आदित्य राणा के साथ झलक क्या कर रही है? उधर झलक ने बेपरवाही से अपना सामान उठाया, कार का दरवाज़ा खोला और बिना पीछे देखे अंदर की ओर बढ़ गई। आदित्य उसे जाते हुए देखता रह गया। वो मन ही मन सोच रहा था, शायद वो रुककर बाय कहेगी या कम से कम ड्रॉप करने के लिए थैंक यू ही बोल देगी। लेकिन झलक ने कुछ नहीं कहा, सीधे अंदर चली गई। ये देखकर स्नेहा जी धीरे से बोली, अरे ये दोनों साथ में आए हैं, झलक उसे अपने साथ लाई है। लगता है दोनों में बातचीत शुरू हो गई है, हो सकता है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ महसूस होने लगे। मुझे तो आदित्य जी बहुत पसंद आ रहे हैं, दामाद जी जैसे। माँ, अनामिका ने मुंह खोलकर उन्हें देखा, अभी तो आपने बस नाम सुना है और आप उन्हें दामाद जी भी बना चुकी हैं। फिर हंसते हुए बोली, हेलो हेलो, इतनी जल्दी ख्वाबों में मत जाइए, वो सिर्फ ड्रॉप करने आए हैं। आपने देखा नहीं, आपकी रौद्र बेटी ने एक बार भी रुककर थैंक यू तक नहीं कहा। बेचारे का चेहरा देखिए कैसे उतर गया है। चलो उसकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ। ये कहकर अनामिका जल्दी से बालकनी में थोड़ा आगे आई, ऊपर से हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो मिस्टर राणा, झलक को छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झलक के कानों में अनामिका की आवाज़ साफ पहुँच रही थी। उधर आदित्य ने ऊपर देखा, अनामिका को हाथ हिलाते देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। अनामिका बुदबुदाई, चलो उसने थैंक यू नहीं कहा तो क्या हुआ, उसकी बहन में थोड़े बहुत मैनर्स तो हैं। आदित्य मुस्कुराया, फिर जल्दी से कार में बैठकर वहां से रवाना हो गया। उधर झलक सीधे जाकर दादाजी के सामने बैठ गई। उसने बड़े ध्यान से उनके चेहरे को देखा। दादाजी शांत स्वर में बोले, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। तुम सोच रही होगी कि आदित्य वहां क्यों था, लेकिन बेटा उसका वहां जाना जरूरी था। ये सुनते ही झलक चौंकी। आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं दादाजी? वो तीखे स्वर में बोली, मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने आदित्य राणा को वहाँ क्यों भेजा? आपने देखा, उसने जाकर मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। मैं पूरे 450 करोड़ रुपए सिद्धार्थ खुराना के बर्बाद करवाने वाली थी। वो 200 करोड़ के नेकलेस को 450 करोड़ में खरीदने वाला था, लेकिन आदित्य ने सीधा 500 करोड़ की बोली लगाकर वो नेकलेस खुद खरीद लिया। आप जानते हैं मेरी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। एक पल को दादाजी सचमुच चुप रह गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बेटा अगर आदित्य ने ऐसा किया है तो ज़रूर उसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे लगता है वो तुम्हें कभी हारते हुए नहीं देख सकता। बस, झलक ने तेज़ी से उनकी बात काट दी। दादाजी आप समझ क्यों नहीं रहे, मेरा आदित्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ मुझे उसके साथ अपना नाम जोड़ना पसंद नहीं है, फिर आप बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने मना कर दिया ना, तो फिर बार बार क्यों? उसकी आवाज़ ऊँची हो गई थी। दादाजी कुछ कह पाते उससे पहले ही पीछे से आवाज़ आई, दादाजी की इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। झलक ने मुड़कर देखा, सामने उसके पिता खड़े थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, आदित्य को तुम्हारे पीछे भेजने के लिए मैंने ही कहा था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। आरव जी ने भारी लेकिन स्थिर आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी फौलादी है और वो किसी से नहीं डरती, लेकिन बेटा तुम ये भूल रही हो कि मैं एक बाप हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे मेरा परिवार वापस मिला है। जहाँ मेरे जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहीं मेरे परिवार ने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी, तो भला मैं तुम्हें इस तरह अकेले कैसे जाने देता? उन्होंने झलक की ओर गहराई से देखते हुए कहा, इसलिए मैंने ही दादाजी से कहा था कि वो किसी ऐसे इंसान को भेजे जो तुम्हारा ध्यान रख सके, तुम्हारा पूरी तरह ख्याल रख सके। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने आदित्य को यूं ही भेज दिया होगा? नहीं बेटा, सोच समझ कर ही भेजा गया था, और जो कुछ भी हुआ शायद ठीक ही हुआ। फिर हल्की सख्ती के साथ बोले, वैसे भी उस नेकलेस को न खरीदने के बाद सिद्धार्थ खुराना और खुराना परिवार की क्या हालत हुई होगी, ये बात मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। फिलहाल अब तुम तैयारी करो एक आखिरी चोट देने की। उस चोट के बाद उन्हें अपनी औकात खुद समझ आ जाएगी और वे तुम्हारे आसपास नज़र भी नहीं आएंगे। आरव जी की बात सुनकर झलक के लिए उनसे बहस करना मुश्किल हो गया। वो कुछ कह न सकी, चुपचाप सिर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही आज की हर घटना उसके दिमाग में एक एक कर घूमने लगी। सबसे ज्यादा उसे वही पल याद आ रहा था, कैसे सिद्धार्थ खुराना आकांक्षा के बेहद करीब खड़ा था, कैसे वो नेकलेस खरीद कर आकांक्षा को पहनाना चाहता था, लेकिन आखिरी वक्त पर आदित्य ने जाकर पूरा खेल पलट दिया। 500 करोड़ की बोली लगाकर उसने सबकी सांसें रोक दी थीं। छलक को पैसों का गम नहीं था, 500 करोड़ उसके लिए मायने नहीं रखते थे, लेकिन जिस तरह सबके चेहरे उतर गए थे वो उसके लिए काफी था। आकांक्षा का बेहोश होना भी उसने अपनी आंखों से देखा था, उसके दिल को हल्का सा सुकून मिला था। लेकिन वो ये भी समझ चुकी थी कि सिद्धार्थ खुराना, रणविजय खुराना, आकांक्षा ओबेरॉय और नैना ओबेरॉय अब पूरी तरह जख्मी हो चुके हैं, और जख्मी लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे इस वक्त झलक को खत्म करने के लिए बेताब होंगे, हर जगह उसकी तलाश कर रहे होंगे। ये सोचते हुए झलक के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। उधर जैसा झलक ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी पावर और पोजीशन लगा दी थी आदित्य राणा और झलक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई खास सूचना नहीं मिल पा रही थी। सबसे बड़ा कारण था आदित्य की सीक्रेट लाइफ। उसने कभी खुद को मीडिया के सामने पेश नहीं किया था, न इंटरव्यू, न प्रेस कॉन्फ्रेंस, न पब्लिक अपीयरेंस। लोग सिर्फ उसके नाम से परिचित थे, उसका चेहरा तक किसी ने ठीक से नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने रौनित को आदेश दिया, जितने लोग लगा सकते हो लगा दो, बाहर से भी आदमी हायर करो, ऑफिस के सारे सिस्टम पर सर्च कराओ, गूगल, डेटाबेस, प्राइवेट नेटवर्क, जहां तक पहुंच हो सब खंगाल दो। मुझे हर हाल में पता चाहिए झलक कहां है और आदित्य राणा कौन है। लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि आदित्य ने पहले ही अपनी सारी डिजिटल जानकारी हटवा दी थी। ऑनलाइन प्रोफाइल्स क्लीन, इमेज रिजल्ट्स गायब, डेटाबेस एक्सेस सीमित, मानो वो अचानक हवा में विलीन हो गया हो। सबके दिमाग सुन्न पड़ गए थे, आखिर कोई इंसान यूं अचानक कैसे गायब हो सकता है। रणविजय तो अंदर ही अंदर खौल रहा था, उसे लगने लगा था जब तक झलक जिंदा है उसका कोई भी प्लान पूरा नहीं हो पाएगा। पहले वो झलक के कंधे पर बंदूक रखकर अपना खेल खेलना चाहता था, लेकिन अब जब सिद्धार्थ और झलक का कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो उसने आकांक्षा के जरिए अपना मकसद पूरा करने की ठानी। इस बेचैनी में वो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर हायर करने की तैयारी कर रहा था, अपने कलेक्शन और पैसों का इस्तेमाल करने को तैयार था। उसे ये जानना था झलक को किसका सपोर्ट मिला हुआ है और वो आदमी कौन था जो उसके साथ था। उसे साफ याद था कैसे आदित्य राणा ने सबके सामने झलक को नेकलेस पहनाया था। उस वक्त आदित्य के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे,
वो झलक को सिर्फ पसंद नहीं करता बल्कि वो उसे हारने नहीं देना चाहता। आगे की स्टोरी के लिए बने रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए स्टोरी मणियां।